महाभारत की इन क्लासेस में कक्षाओं में अब तक चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि किस प्रकार द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। द्रौपदी के वस्त्र हरण के बाद फिर किस प्रकार दोबारा जब उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलाया गया और उसके बाद कैसे फिर उनका वनवास में प्रवेश किया पांडवों ने, और फिर वन में प्रवेश करके किस प्रकार विदुर उनसे मिलने आए और विदुर को वापस बुलाया धृतराष्ट्र ने। दुर्योधन इत्यादि ने सोचा कि हमें जाकर आक्रमण करना चाहिए, मार डालना चाहिए पांडवों को। वन में जाने लगे, व्यासदेव ने आकर रोक दिया और फिर मैत्री मुनि इत्यादि उसे समझाने लगे दुर्योधन को कि ये ठीक नहीं है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो अब इसके आगे चर्चा करेंगे। तो मैत्री मुनि समझाने लगे कि भीम, जिससे तुम युद्ध करना चाहते हो, तुम इसकी शक्ति जानते नहीं हो। और फिर उन्होंने कहा, उस समय धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि आपने बताते बताते अभी कहा कि भीम ने वहां पर वन में किरमिर नामक राक्षस का वध कर दिया, तो कृपया बताइए कि कैसे वध किया। तो मैत्रेय मुनि उस समय इतने दुखी हो गए थे उस स्थिति को देखकर कि उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा पुत्र है दुर्योधन, ये मेरी कोई बात नहीं सुनता है, ये अपने मन की कर रहा है, गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, तुम भी सहयोग कर रहे हो, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है अब और यहाँ रुकने की। हाँ, ये विदुर जी हैं, ये तुम्हें बताएंगे कि कैसे किरमिर का वध बल भीम ने किया। और ये कहे कि वो चले गए वहाँ से, दुखी हो गए, क्योंकि जो साधु होते हैं उनके हृदय में दुख इसलिए नहीं होता जब उन्हें कोई शारीरिक कष्ट होता है, या फिर उनका दुख उनके मन उनके शरीर के कारण नहीं होता। साधुओं को दुख होता है ये देखकर कि जब व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता, जब व्यक्ति भगवान को समर्पण नहीं करता। दुर्योधन को इतना समझा रहे थे कि वे पांडव भक्त हैं, उनके प्रति अपराध नहीं करो, भगवान हैं कृष्ण, तो ये सब सुनने के बाद भी जब दुर्योधन तैयार नहीं थे तो ऐसी अवस्था को देखकर बड़े हृदय में दुख हो गया मैत्रेय मुनि के। तो ये साधुओं का दुख है, साधु कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान सम्मान के लिए दुख नहीं करते, क्रोध नहीं करते। कभी कोई उनका अपमान भी कर दे तो वो चिंता नहीं करते, लेकिन जहां वो देखते हैं कि भगवान और उनके भक्तों के प्रति अपराध हो रहा है तो वो चुप नहीं रहते। और इसका उदाहरण हनुमान जी हैं। हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका में उनके ऊपर बहुत सारे हथियार फेंके गए, आक्रमण किया, पकड़ने का प्रयास किया, हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, पकड़े भी गए। और फिर जब लंका के साथ लंकेश्वर के सामने आए तब भी उसने बहुत सी बातें उनको कहीं, बंदर कहा इत्यादि इत्यादि, हनुमान जी आराम से चुप रहे। लेकिन जब हनुमान जी ने प्रयास किया समझाने का, लेकिन जब उसने अपराध किया भगवान के प्रति, श्री रामचंद्र के प्रति रावण ने, तब हनुमान जी को सहन नहीं हुआ और फिर हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, क्रोध दर्शाया। ऐसे ही चैतन्य लीला में हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया, किस लिए? जब तक नित्यानंद प्रभु को जगाई और मधाई ने मारा नहीं था, चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाला नहीं, कोई क्रोध नहीं किया। उनको तो बहुत कुछ लोग कहा करते थे, चैतन्य महाप्रभु ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु पर ऐसे फेंक कर उस मटके को मार दिया, नित्यानंद प्रभु के माथे से खून निकल रहा है, तो उसको देखकर वो क्रोध में हो गए। तो उन्होंने क्रोध किया भक्त के दशा को देखकर। तो ये साधुओं का क्रोध या साधुओं का दुख होता है। मैत्रेय मुनि दुखी इसलिए नहीं हुए कि दुर्योधन उनकी बात नहीं सुन रहा, वो दुखी इसलिए हुए कि दुर्योधन भक्तों के प्रति अपराध करने जा रहा है। व्यासदेव ने भी इसीलिए रोका, पांडवों के प्रति अपराध मत करो, लेकिन दुर्योधन ने सुना नहीं। तो मैत्री मुनि चले गए, विदुर फिर समझाने लगे कि कैसे भीम ने किरमिर राक्षस का अकेले वध किया। बहुत विशाल राक्षस था, जैसे ही ये लोग वन में प्रवेश करते हैं काम्य वन में, अचानक वो सामने आ जाता है, बहुत विशाल। महाभारत में वर्णन है कि वो इतना विशाल था कि उसको देखते ही द्रौपदी बेहोश हो गई। केवल उसने देखा कि ये कौन आ गया और द्रौपदी बेहोश हो गई। सब भाइयों ने संभाला उसको। तो उस समय भीम ने युद्ध करने के लिए सोचा, तो भीम जाने लगे। उस समय पहले उसने पूछा किरमिर ने, कौन हो तुम लोग? मैं यहाँ पर जो भी आता है उसको हरा कर खा जाता हूँ, और मैं सोचता रहता हूँ कि कोई यहाँ आए। आज तुम पांच पांच लोग आ गए, छः छः लोग आ गए हो, आज तो बहुत अच्छा, सबको खाऊंगा। तो उन्होंने परिचय पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने परिचय दिया। किरमिर कहने लगा कि बस अब आपका जीवन इतना ही था आप लोगों का, और आपको तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था भीम, क्योंकि आपने मेरे भाई का वध किया था। जब एक चक्र ग्राम में ये रह रहे थे भीम, तो उन्होंने एक असुर को मारा था, बकासुर, वो इनके भाई थे। तो उन्होंने कहा मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कौन है ये भीम जिसने मेरे भाई को मारा है, मैं मारना चाहता हूँ। तो आज तुम मिले हो, बस तुम्हारा तुम्हारे परिवार के साथ आज आखिरी समय है। तो युधिष्ठिर महाराज को भी क्रोध आया, भीम ने भी एक पेड़ उखाड़ लिया मारने के लिए, अर्जुन ने अपना तीर तैयार कर लिए। तो अर्जुन जब तैयार हुआ मारने के लिए, तो भीम ने रोक दिया। भीम ने कहा जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। तो भीम ने सबको रोक दिया और अकेले उन्होंने युद्ध किया इस किरमिर से। बहुत बलवान राक्षस था, महाभारत के कई श्लोकों में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में, और फिर अंत में भीम ने उनको मारा। और भीम ने कहा कि जाओ तुम भी नरक में, जहाँ तुम्हारे भाई गया है, अब दोनों शोक करना वहाँ जाकर। तो भीम ने भी उनको मार दिया। तो ये कथा विदुर जी ने सुनाई कि देखिए, इतने बड़े बड़े राक्षसों को भीम निहत्थ कोई हथियार के बिना मार रहे हैं, और आप ऐसे व्यक्तियों को मारने का प्रयास करने का सोच रहे हो। तो उस समय फिर जो दुर्योधन इत्यादि थे वो शांत हो गए, क्योंकि विदुर ने समझाया। विदुर ने भी कहा कि ठीक नहीं है। व्यासदेव ने समझाया, मैत्री मुनि ने समझाया कि आपको मारने नहीं जाना चाहिए। तो खैर, इधर पांडवों के पास, यहाँ जब पांडव रह रहे थे, तो विदुर तो चले गए। कृष्ण और धृष्टद्युम्न, पांचाल, नरेश इत्यादि, इन सबको पता चला कि अरे पांडवों को वनवास हो गया, फिर से जुआ खेला गया। तो ये सब मिलने आए, और सब आकर बड़े क्रोध में थे, स्वाभाविक है। सब पूछ रहे थे क्या करना चाहिए, हमें बताइए क्या करें। सब तैयार थे युद्ध के लिए। और इतना ही नहीं, कृष्ण ये बहुत क्रोध में थे। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि कृष्ण ने क्रोध में कहा कि ये सारे लोग जिन्होंने भी आपके प्रति अपराध किया है युधिष्ठिर महाराज, ये सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। मैं आपको वचन देता हूं, ये सारे मारे जाएंगे। और बड़े क्रोध में थे, तो उनके क्रोध को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि ये तो कृष्ण है, ये तो भगवान है, और ये ऐसे इतने क्रोध में। देखिए, यहां महाभारत में हम लोग सुन सकते हैं कि जब हम लोग भगवद गीता का वर्णन सुनते हैं कि अर्जुन भूल गए कि ये भगवान हैं, और भगवान को बताना पड़ा, और हम लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि भगवान की योजना थी, तो इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है कि अभी इसी समय अर्जुन बता रहे हैं श्री कृष्ण को कि आप कौन हैं। तो अभी तो भगवद गीता नहीं कही गई, अभी तो भगवान ने अपने विश्वरूप प्रकट नहीं किया, अभी तो भगवान ने भगवद गीता के अनुसार कहा नहीं अहम सर्वस्य प्रभवमत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये तो अब बाद में आने वाला है। लेकिन आज अभी जहां युद्ध नहीं हुआ, अभी केवल वनवास हुआ है, अर्जुन कृष्ण से कहने लगे। अर्जुन ने कृष्ण के पूर्व जन्मों का वर्णन किया, कि आप वही हैं जो वामन के रूप में प्रकट हुए, आप वही हैं जो नारायण के रूप में प्रकट हुए, आप ही आदि विष्णु हैं। आदि विष्णु अर्थात विष्णु के उद्गम, आपसे विष्णु आते हैं और आप ही नारायण हैं, आपने तपस्या की ऋषि के रूप में। ऐसे बहुत सारे उनकी लीलाओं का स्मरण करने लगे अर्जुन, उनको शांत करने के लिए। और फिर आप अब आए हैं इस मानव रूप में और आपने कई राजाओं का वध किया, इन सब कथाओं को वो कहने लगे। और फिर वो कहने लगे कि ब्रह्मा जी, जब ये सृष्टि प्रारंभ होती है तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो भी आपसे ही प्रकट होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ही नहीं, शिव जी भी आपसे प्रकट होते हैं, सारे देवता आपसे प्रकट होते हैं, आप ही उद्गम हैं उनका। इस बात को आगे चलकर भगवद गीता में भगवान कहेंगे, अहम आदिर ही देवानाम, सारे देवताओं का आदि उद्गम मैं हूं। ये तो बहुत स्पष्ट कहेंगे भगवान। लेकिन अर्जुन ने अभी से ही कह दिया कि आप ही आदि हैं सबके, और आप इस सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही इसका पालन करते हैं। तो ऐसे भगवान का गुणगान करने लगे। और फिर उन्होंने उनके क्रोध को शांत करने के लिए बहुत सुंदर बात कही। अर्जुन कहते हैं, न क्रोध न मात्सर्यम, आप में न क्रोध है न मात्सर्य है, न क्रोध न च मात्सर्यम न नृतम मधुसूदन त्वयि तिष्ठति दर्शाहार न निषण्णम कुतोनुज। वो कहते हैं न क्रोध, आपके अंदर को क्रोध नहीं है, न च मात्सर्यम, और ना ही कोई द्वेष है। मात्सर्य अर्थात किसी से द्वेष करना। तो वो कहने लगे कि आप तो भगवान हैं, आपके लिए सब समान है, आप किस पर क्रोध करेंगे? क्योंकि अब वो क्रोध कर रहे थे अर्जुन के सामने। क्यों क्रोध आ रहा था कृष्ण को? क्योंकि भक्तों के प्रति अपराध हुआ था। कृष्ण को इसी दशा में, केवल एक दशा में क्रोध आता है, जब भक्तों के प्रति अपराध होता। लेकिन अर्जुन कहने लगे, न क्रोध न च मात्सर्यम, हे कृष्ण आप भगवान हैं, आपके अंदर न क्रोध है न द्वेष है। द्वेष क्यों कहा? क्योंकि क्रोध द्वेष से उत्पन्न होता है। जब हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं तो उस द्वेष से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो आपके अंदर न तो क्रोध है न द्वेष है, न असत्यता है और न नृशंसता। नृशंसता यानी क्रूरता, आप क्रूर नहीं हैं। देखिए भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, क्रोध नहीं है भगवान में। कभी कभी हम लोग सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, या भगवान अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा या भगवान के मंदिर नहीं जाऊंगा तो भगवान कुछ कर डालेंगे मेरे जीवन में, क्रोधित हो जाएंगे। कोई क्रोध नहीं है भगवान को, भगवान क्रोध से मुक्त हैं। ये तो हम लोगों के लिए है क्रोध, जीव बद्ध अवस्था में क्रोध करता है। क्रोध हमारे लिए, हम लोगों को क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कारण हमारा मन वश में नहीं है, लेकिन कृष्ण का मन पूर्ण तरह से वश में है। हमारा मन वश में नहीं है इसीलिए हम क्रोध कर बैठते हैं। दूसरा, आसक्ति। आसक्ति हमें बहुत है, कृष्ण को कोई आसक्ति नहीं है, पूर्ण वैराग्य है हमें। तीसरा कारण, द्वेष। हम जब एक दूसरे से द्वेष करते हैं तो क्रोध आता है, कृष्ण में कोई द्वेष नहीं है। कृष्ण किससे द्वेष करेंगे? सभी उनकी संतान है, इसलिए कृष्ण किससे द्वेष नहीं करते। जो व्यक्ति उनका विरोध करते हैं कृष्ण उनसे भी द्वेष नहीं करते। जो व्यक्ति उनको नकार देते हैं, उनके रूप को नकार देते हैं, कृष्ण उनसे भी द्वेष नहीं करते। हां, कभी कभी कृष्ण दंड देते हैं, लेकिन यह दंड भी द्वेष से नहीं होता। जैसे शिशुपाल को दंड दिया भगवान ने, द्वेष नहीं था, बहुत अपराध कर रहा था शिशुपाल, भगवान ने उसको मार दिया, द्वेष नहीं था, उद्धार किया। भगवान के मारने में और हमारे मारने में यह अंतर है। जब भगवान किसी को मारते हैं तो उसका उद्धार करते हैं, मारते नहीं हैं। पूतना का वध किया भगवान ने, लेकिन पूतना को आध्यात्मिक जगत में भगवान ने आया का स्थान दिया। आया समझते हैं आप लोग? दाई या आया, जो मां के समान ही बच्चे को पालती है। तो मां का स्थान दिया या पूतना को, मारा नहीं। इसीलिए कहना नहीं चाहिए कि पूतना को मार डाला भगवान ने, नहीं, पूतना का उद्धार किया, शक्तासुर को मारा भगवान ने, सबके सामने एक विमान आया वैकुंठ से और शक्तासुर वैकुंठ चला गया, ये तो सबके सामने हुआ, तो भगवान ने मारा नहीं। तो इसीलिए अगर भगवान दंड भी देते हैं तो ये दंड उस जीव के उद्धार के लिए होता है, ये दंड भगवान देते हैं जिससे वो जीव शुद्ध हो सके, क्योंकि जिसको स्वयं भगवान मारते हैं वो वैसे ही शुद्ध हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अंत काले चमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, अगर व्यक्ति भगवान का स्मरण करके मृत्यु को प्राप्त होता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो जो व्यक्ति भगवान के द्वारा मारा जा रहा है, स्मरण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष भगवान को देख रहा है, तो उसका उद्धार कैसे नहीं होगा। तो इसीलिए अर्जुन कहते हैं न क्रोध न च मात्सर्यम, आपके अंदर में तो क्रोध है और न द्वेष है और न ही असत्यता है, ये भगवान के गुण है, परम सत्य भगवान है, इसीलिए जो भगवान कहते हैं वो धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म बनाया नहीं जाता, हम किसी धर्म को बना नहीं सकते, धर्म के सिद्धांत हम नहीं बना सकते, धर्म के सिद्धांत केवल वो व्यक्ति बना सकता है जो पूर्ण सत्य में स्थित है, जो परम सत्य है, और वो है श्री कृष्ण। इसलिए धर्म के सिद्धांत भगवान बनाते हैं, धर्म क्या है भगवान सिखलाते हैं, हमारे द्वारा बनाए गए धर्म के नियम ये तो केवल कैटभ धर्म है, झूठा धर्म है, धोखा है, इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। जो धर्म मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है, शास्त्रों के विरुद्ध रहकर बनाता है, उसका आधार इंद्रिय तृप्ति होता है, भोग होता है। लेकिन जो धर्म भगवान बनाते हैं, जो सिद्धांत भगवान देते हैं शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों की वाणी से, वो सच्चा धर्म है, क्योंकि वो धर्म हमें कृष्ण तक ले जाता है। तो इसीलिए उस धर्म में कोई भोग नहीं है, सच्चा धर्म भोग से परे है, सच्चा धर्म इंद्रिय तृप्ति से परे है, सच्चा धर्म कृष्ण की भक्ति है, इसको जानना चाहिए, क्योंकि कृष्ण क्रोध से परे है, कृष्ण सत्य में रहते हैं, परम सत्य हैं, और कृष्ण में द्वेष नहीं है। जो व्यक्ति द्वेष से परे हो, क्रोध से परे हो, सत्य में स्थित हो और क्रूर नहीं हो, यहां अर्जुन कह रहे हैं न नृशंसम कुतो, न नृशंस, नृशंसता नहीं है आप में, क्रूरता नहीं है, तो क्रूरता नहीं हो, भगवान क्रूर नहीं है। क्रूरता मतलब किसी को बहुत दंड दे देना अगर उसने छोटी सी गलती की है, इसको क्रूरता कहते हैं, या फिर कोई गलती नहीं की तो भी दंड दे देना, ये क्रूरता है, या फिर ऐसा दंड देना कि जिसको देखकर दिल दहल जाए, ये क्रूरता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई बच्चा पैदा होता है, उसको बहुत बीमारी होती है, उसका उसका शरीर ठीक नहीं होता, हमें लगता है भगवान कितने क्रूर हैं, इस छोटे से बालक को इन्होंने ऐसा दंड दिया, ऐसा क्या किया इस छोटे से बालक ने, जन्म लिया है अभी, तो ये क्रूरता नहीं है भगवान की, ये न्याय है प्रकृति का, भगवान का इसमें कुछ लेना देना नहीं, ये तो हम कार्य करते हैं, प्रकृति न्याय के अनुसार हमें दंड देती, क्रूरता भगवान में नहीं है, क्रूरता जीव में है, बद्ध जीव में, हम सब क्रूर हैं, और इस क्रूरता को हम अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं, कभी हमारी क्रूरता किसी जीव, किसी प्राणी पर, किसी पशु पर निकलती है, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए हम लोग किसी प्राणी को मार देते हैं, ये क्रूरता है, कभी कभी अपने अहंकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए हम दूसरे के मान को ठोकर मार देते हैं, ये क्रूरता है। तो क्रूरता हम में है, कृष्ण में नहीं, कृष्ण क्रूर नहीं है, कृष्ण सही करते हैं, जो भी करते हैं वो दंड भी देते हैं तो वो प्रेम है उनका। कृष्ण में केवल प्रेम है, क्रूरता नहीं है, इसको जानना चाहिए। कृष्ण, वैसे तो हम ये कह नहीं सकते कि बने हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि कभी ऐसी चर्चा हो कि कृष्ण किस चीज से बने हैं, जैसे हमारा शरीर बना है भूमि राप नलो वायु, तो हमारा शरीर पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से बना है, कृष्ण किससे बने? अगर ये प्रश्न आए और कभी तो कल्पना की जाए, चर्चा की जाए, तो उत्तर ये आएगा कि कृष्ण प्रेम और कृपा से बने हैं, बस यही है उनके पास, और कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो यही दे सकते हैं, जिसके पास जो है वो वही देगा। कृष्ण के पास क्रूरता है ही नहीं तो वो देंगे कहां से? कृष्ण के पास केवल प्रेम है, कृष्ण के पास केवल कृपा है, और इसीलिए कृष्ण केवल इसी को देते हैं। क्रूरता हम बांटते हैं, अन्याय हम बांटते हैं, क्योंकि हम बद्ध हैं, हम बंधे हुए हैं भौतिक भोगों से, भौतिक इच्छाओं से, लेकिन कृष्ण केवल प्रेम बांटते हैं, केवल कृपा को बांटते हैं। इसीलिए किसी का वध करना ये भी कृष्ण की कृपा है, किसी को दंड देना ये भी कृष्ण की कृपा है। इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि महाभारत का युद्ध और कृष्ण की रासलीला एक समान है, कोई अंतर नहीं। यहां कृष्ण प्रेम के द्वारा गोपियों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, वहां दंड देकर अन्य जीवों पर, वीरों पर, क्षत्रियों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोनों जगह कृपा है, ये कृष्ण है जो केवल बने और प्रेम और कृपा से हैं, तो इसीलिए उस चीज को वो प्रदान करते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि इस तरह से आपके अंदर नृशंसता नहीं है, क्रूरता नहीं है, अब शांत हो जाएगी। शुरुआत में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो दो असुरों ने, अर्जुन कहने लगे मधु और कैटब, उन्होंने बहुत उत्पात किया और उस समय भी आपने उनका वध किया था। इसीलिए भगवान को कहा जाता है मधु कैटब हारी, मधु और कैटब के जो शत्रु हैं, ये मधु और कैटब ये बहुत शक्तिशाली राक्षस थे, बहुत तपस्या की, वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि बस वरदान ये चाहिए कि हम लोग भूमि पे नहीं मरें, आकाश में नहीं मरें, जल में नहीं मरें, वायु में नहीं मरें, अग्नि में नहीं मरें, अर्थात ये जो पंच महाभूत हैं इनकी बनी हुई किसी चीज पर नहीं मरें। ये हिरण्यकशिपु से बड़े असुर थे, परंपरा चली आ रही है। हिरण्यकशिपु ने तो अंदर बाहर ऊपर नीचे दिन रात कह लिया था, ये तो इतने महान निकले कि इन्होंने कहा कि ये पांचों ही कुछ तो होगा। अगर हिरण्यकशिपु ने कहा अंदर नहीं बाहर नहीं, तो बीच में जो था वो पृथ्वी तो थी, बीच का जो स्थान था, लेकिन इन्होंने तो इतनी बुद्धि लगाई कि पृथ्वी नहीं, जल नहीं, आकाश नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, पंच महाभूत से बनी कोई चीज से हम नहीं मरे, तो अर्थात अमर हो गए, क्योंकि कहीं भी उनको मारा जाएगा तो या तो पृथ्वी होगी, आकाश होगा, जल होगा, अग्नि होगी, वायु होगा, या किसी चीज से मारेंगे तो वो भी इनसे बनी होगी। तो देखिए कितनी बुद्धि लगाई, लेकिन भगवान ने फिर भी मार दिया। और कैसे मारा भगवान ने? इनका बल देखिए, क्योंकि ये बड़े शक्तिशाली हो गए, कोई लड़ने के लिए नहीं था, ये शुरुआत का समय था, ब्रह्मा जी अभी अभी प्रकट हुए थे, तो उस समय मधु और कैटब ढूंढ रहे थे किसी से युद्ध करने के लिए। तो भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा कि क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? बोले मैं आपसे, हमसे युद्ध करना चाहते हैं, हमसे यही वरदान चाहिए। तो भगवान से युद्ध हुआ, तो भगवान ने कैसे मारा? ब्रह्मा जी के वचन को रखते हुए भगवान ने अपनी गोद में बिठा कर मार दिया। भगवान की गोद न भूमि है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, वो तो कोई पंच तत्वों से नहीं बना है। भगवान की जो गोद आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह, तो भगवान ने बड़े आराम से मार दिया। तो देखिए असुर ऐसे होते हैं, अपनी सारी बुद्धि लगा लेते हैं बचने के लिए। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि जिसको कृष्ण मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता, लेकिन जिसको कृष्ण बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। इसीलिए हमें निर्भय होना चाहिए, भक्तों को कभी भय नहीं होना चाहिए मृत्यु का। क्यों? क्योंकि अगर मृत्यु कृष्ण चाहते हैं तो मृत्यु अभी भी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। आप कितनी सिक्योरिटी कर लीजिए, कितने सैनिक खड़े कर लीजिए, जो चाहें आप सिक्योरिटी कर लीजिए। आजकल लोग बहुत घबराते हैं तो बड़ी सिक्योरिटी होती है, घर में जाइए तो पहले आजकल वो फोन लगे हैं जिससे अंदर दिखाई देता है, तो व्यक्ति देखता है कौन है, क्या ही के लिए आए हैं, क्या काम है, अकेले हैं, ये वो सब पूछ कर बहुत सिक्योरिटी है, फिर भी मर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई मरता नहीं है, जिसने अमेरिका का उदाहरण है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पूरी सिक्योरिटी लगा रखी थी, जब बिल्डिंग बनाई तो कहा कि इसको कुछ नहीं हो सकता, ना अर्थक्वेक आएगा, भूकंप से नहीं गिरेगी, किसी से नहीं, प्लेन भी अगर इसमें टकरा गया तो कुछ नहीं होगा, समाप्त, धड़ गिर गई दोनों। तो इसीलिए ये हमें जानना चाहिए कि जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, फिर वो कहीं भी हो, और जिसको कृष्ण मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। तो मधुवर कैतब को मारा था, तो ये सब स्मरण करने लगे अर्जुन, और उन्होंने कृष्ण को शांत किया। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं नारायण हूं और तुम नर हो, हम दोनों यहां पर आए हैं। और उन्होंने कहा कि जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे भी द्वेष करता है। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं, यस्त्वं द्वेषति समां द्वेषति, यस्त्वं द्वेषति, जो यस्त्वं आपसे द्वेष करता है वो मुझसे भी द्वेष करता है। अर्थात भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे भक्तों से द्वेष करता है दरअसल वो मुझसे द्वेष कर रहा, भक्तों से द्वेष नहीं कर रहा, वो भक्ति नहीं कर रहा, वो मुझसे द्वेष कर रहा। ऐसी बातें महाभारत में कई बार भगवान ने कही। जब भगवान शांति दूत बनकर गए, आगे जाएंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि शांति दूत बनकर जाते हैं भगवान, तो उस समय दुर्योधन ने बहुत व्यवस्था की भगवान के लिए। उनको पता था कि कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बनकर, और शांति तो चाहते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत करूँगा, उनको बड़ा अच्छा मान सम्मान दूंगा, अच्छा खिलाऊंगा, और फिर कृष्ण को कहूँगा कि चले जाओ, ये सब शांति वांति नहीं, युद्ध करेंगे। तो जिस समय गए थे उस समय जब बहुत पकवानों की, 56 भोग व्यंजन सब पकवानों की व्यवस्था की थी दुर्योधन ने श्री कृष्ण के लिए, और दूसरी ओर विदुर थे जिन्होंने बड़े प्रेम से भगवान को बुलाया था कि आप आइए घर पर प्रसाद के लिए। विदुर तो साधारण भोजन देने वाले थे, लेकिन दुर्योधन ने तो बड़े राजसी ठाट से राजभोग रेडी किया हुआ था। तो भगवान ने उस समय भी दुर्योधन से कहा कि मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे भक्तों से, अर्जुन इत्यादि पांडवों से तुम द्वेष करते हो। देखिए बहुत स्पष्ट भगवान कई जगह पे महाभारत में कहेंगे इस बात को, जैसे इस यहां कह रहे हैं, जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता। ऐसी बातें कई स्थानों पर आती हैं। तुलसीदास जी भी रामायण में लिखते हैं, भगवान एक बात को कहते हैं, एक दोहा है जहाँ भगवान कहते हैं कि अगर शिव द्रोही मम द्रोही, अगर कोई शिव जी से द्रोह करता है, द्रोह अर्थात द्वेष करता है, द्रोही है उनका, उनका अपराधी है, तो मम द्रोही, वो मेरा भी अपराधी है, रामचंद्र जी कहते हैं। तो ये कई स्थानों पर ये प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अगर वो देखते हैं कि कोई अपने मेरे भक्तों से द्वेष कर रहा है तो वो मानते हैं कि मुझसे द्वेष कर रहा है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हमें भगवान से प्रेम करना सीखना है तो हमें भक्तों से प्रेम करना सीखना चाहिए। अगर हमें भगवान को पाना है तो भक्त ही माध्यम है, भक्ति की जननी अर्थात भक्ति जन्म लेती है भक्तों से, भक्तों के हृदय से, और इसीलिए भक्तों का बहुत महत्व है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे भक्ति के जीवन का आधार भक्तों की कृपा हो, हम भक्तों के संग में रहें, भक्तों की कृपा प्राप्त करें, भक्तों की सेवा कर सकें। अगर ऐसे हमारा जीवन बीतेगा तो भले ही हम शुद्ध ना हो, श्री कृष्ण हम पर कृपा करेंगे और हम बड़ी आसानी से श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बहुत सरल मार्ग है कृष्ण की प्राप्ति का, भक्तों की सेवा, भक्तों की कृपा। वैसे अगर देखा जाए तो इस कलयुग में, इस समय में और कोई मार्ग नहीं है। यज्ञ इत्यादि करना, तपस्या करना, ये सब संभव नहीं है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौरताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये सब संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा सरल उपाय है और वो है भगवान के भक्तों की सेवा। कई स्थानों पर भगवान ने कहा है, आदि पुराण में भगवान कहते हैं कि जो भक्त, जो व्यक्ति कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, वो दरअसल मेरा भक्त है। बहुत स्पष्ट भगवान ने कहा, और आचार्यों ने भी इसी बात को समझाया है। राजा कुलशेखर जो बहुत बड़े भक्त थे, आलवारों में से एक हैं, जिन्होंने श्री संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं उनको स्थापित किया, तो वो कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक में कि मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो वो ये भी नहीं कहते हैं कि मैं आपका दास बनना चाहता हूँ भगवान से। उन्होंने बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा है, मुकुंद माला स्तोत्र, प्रभुपाद ने उसके कुछ श्लोकों का अनुवाद किया, तो वो ग्रंथ भी आपको मिलेगा, बीबीटी से पब्लिश हुआ है। उसमें ये श्लोक आता जिसमें राजा कुलशेखर क्या प्रार्थना करते हैं, ये नहीं कहते कि मैं आपका दास बनूं, ये भी नहीं कहते कि आपके दासों का दास बनूं। वो कहते हैं तब भृत्य भृत्य भृदस्य भृत्य भृत भृतस्य, सात बार उस श्लोक में कहते हैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनूं मैं, सात बार। ये आचार्यों का भाव है, ये कुलशेखर सिखाते हैं कि हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सीधा कृष्ण का दास, कृष्ण की सेवा नहीं। वो बोलते हैं आपके दास का भी दास नहीं, उनके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके, ऐसे सात बार इस शब्द को इस्तेमाल किया उन्होंने, वो मैं बनना चाहता हूं। ये अच्छा भाव। उद्धव जब गए थे वृंदावन में, तो उद्धव ने क्या कामना की? उद्धव ने कामना नहीं की कि मैं कृष्ण, वो तो सोच रहे थे। दरअसल उद्धव के इस भाव को तोड़ा भगवान ने वृंदावन भेज के। उद्धव सोचते थे मैं कृष्ण का दास हूं, उद्धव सोचते थे मैं कृष्ण के बहुत निकट हूं, कृष्ण मुझसे मंत्रणा करते हैं, हमेशा मुझसे पूछते हैं, मैं दिखता भी उनकी तरह हूं, और उद्धव कपड़े भी कृष्ण के पहनते थे। उद्धव को जो भगवान कृष्ण का एक नियम था, या है कहना चाहिए, कि जब वो एक बार कपड़े पहन लेते दूसरी बार उसको नहीं पहनते। देखिए जो विग्रह सेवा करते हैं उन लोगों को देखिए, जब कुछ सही बात सच्ची जाती तो लाइट जल जाती है। तो जो विग्रह सेवा करते हैं उनको सोचना चाहिए, हम लोग एक ही ड्रेस को हर हफ्ते पहना देते, भगवान एक बार पहनते थे नहीं, फिर उसके बाद कभी नहीं पहनते, फिर वो उद्धव पहन लेते थे उसको। तो उद्धव सोचने लगे, उनको थोड़ा अहंकार हो गया, मैं दिखता भी कृष्ण की तरह हूँ, कपड़े भी उनकी तरह पहनता हूँ, रहता बहुत निकट हूँ, कृष्ण सब कुछ मुझसे पूछ कर करते हैं। तो उसको अहंकार हो गया कि मतलब मैं कोई श्रेष्ठ हूँ। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा जाओ ये संदेश लो और जाओ गोपियों को दे देना। जब गोपियों की भक्ति देखी उद्धव ने, तो उद्धव ने क्या कहा? उद्धव ने कहा असम हो चरण रेणु जो श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। उद्धव कहते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, अब मैं चाहता हूं कि वृंदावन में मैं कोई लता, कोई औषधि, कोई छोटा सा पेड़, कोई पौधा बन जाऊं। क्यों? क्योंकि जब गोपियां चले तो उनके चरणों की धूल मेरे सर पर आए। देखिए, ये वो उद्धव जो भगवान के मित्र हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान के साथ रहते हैं, उनके मंत्री हैं, मंत्रणा करते हैं, सब हैं। अहंकार था तो भेज दिया भगवान में, जाओ देखो भक्ति क्या होती है। और फिर उद्धव ने कहा, असली भक्ति मैं चरणों की धूल लेना चाहता। बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, जिसमें उद्धव कहते हैं, वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधीना, बस वृंदावन में कोई गुल्म लता औषधि बन जाऊं, और जब गोपियां चलें तो मेरे ऊपर से पांव रख कर जाएं और मेरा जीवन सफल हो जाए। ये भक्ति है। तो इसीलिए अर्जुन, यहाँ कृष्ण ने ये कहा अर्जुन से कि जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है। तो इस बात को बहुत महत्वपूर्ण बात है, भक्ति की दृष्टि से हमें बड़े ध्यान से इसको समझना चाहिए कि कभी भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसे भगवान कह रहे थे तो द्रौपदी ने फिर कहना शुरू किया। तो द्रौपदी, देखिए द्रौपदी वैसे एक साधारण स्त्री है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि साधारण स्त्रियां उस समय वैदिक सभ्यता में शास्त्रों के सब ज्ञान को जानती थी। तो द्रौपदी ने कृष्ण की स्थिति को कहना शुरू किया, ये महाभारत के कई श्लोकों में वो कहती हैं। और ऐसे नहीं कहा, उन्होंने प्रमाण दिया, शास्त्रों में असित देवल ऋषि आपके विषय में ये कहते हैं, कश्यप मुनि आपके विषय में ये कहते हैं, नारद मुनि आपके विषय में ये कहते हैं, ये द्रौपदी कह रही हैं। तो देखिए, उस समय स्त्रियों को भी ये सारा ज्ञान हुआ करता था शास्त्रों का। प्रभुपाद लिखते हैं इस बात को कुंती महारानी की शिक्षाओं में, तात्पर्यों में प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय स्त्रियां भी ये सब जाना करती थी, लेकिन फिर भी बहुत सरल रहती थी। ऐसा नहीं था कि शास्त्र का ज्ञान है तो बाहर आकर बहुत बड़े कोई यज्ञ करा रहे हैं, आराम से सब ज्ञान था पूरा। तो यहां द्रौपदी प्रकट करती है, तो द्रौपदी कहती हैं कि असित देवल ऋषि कहते हैं कि आप इस सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि को आप बनाते हैं, ब्रह्मा जी नहीं, और आप ही इसे चलाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, कई बार ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहा जाता है, द्रौपदी कहती है नहीं, आप सृष्टि करता है, ऐसा असित देवल ऋषि कहते। और पराशर मुनि क्या कहते हैं, द्रौपदी कहती हैं, पराशर मुनि कहते हैं कि आप ही आदि विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं, और आप ही याजिक, याजिक का केवल जिनके लिए यज्ञ होना चाहिए वो केवल आप हैं, और आप ही श्री हरि हैं। तो देखिए, द्रौपदी भी उस समय इन बातों को कहती है कि आप ही, वैसे जब हम यज्ञ करें तो यज्ञ केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। इसीलिए वेदों में नियम है, आप किसी का भी यज्ञ कीजिए, अंत में कहना ही पड़ता है कृष्णम अर्पणस्तु, नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं होता। तो इसीलिए सारे यज्ञों का जो मूल उद्देश्य है वो है कृष्ण। यज्ञो वै विष्णु, ये शास्त्र का आदेश है। तो यज्ञ करना है तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस कलयुग में क्या यज्ञ है, हरिनाम यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर वो कहने लगी, नारद मुनि क्या कहते हैं, और कहते हैं कि नारद मुनि कहते हैं कि आप ही सारे देवताओं के आदि हैं, आपसे सारे देवता आते हैं, और ये जो सृष्टि है, ये जो देवता हैं, आप इनसे ऐसे खेलते हैं मानो एक छोटा सा बच्चा खिलौनों से खेल रहा, जैसे एक बच्चा खिलौनों से खेलता है, उसको फेंक देता है तोड़, ऐसे ही आप इस सृष्टि में खेलते हैं। दरअसल ये तुलना ईशोपनिषद में भी की गई है, जहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं ईशोपनिषद के एक तात्पर्य में कि ये जो भौतिक प्रकृति है, जो जगत है, ये भगवान के लिए एक खेल है, भगवान का एक लीला है, खेल है। तो भगवान केवल भौतिक जगत बनाते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद तोड़ देते हैं, ये खेल है। तो जैसे आप बच्चा खिलौनों से खेलता है, ऐसे ही आप इन देवताओं से खेलते हैं। फिर वो ब्रह्मा हो, फिर वो इंद्र हो, वरुण हो, शिव हो, इन सब के आदि आप हैं। ये महत्वपूर्ण भाव, अहम आदिर ही देवाना, जितने भी देव हैं उनका मैं आदि हूँ, ऐसा कृष्ण भगवद गीता में कहे। और यहाँ द्रौपदी उस बात को कहने लगी, और फिर द्रौपदी अपनी व्यथा को प्रकट करना चाहती। दरअसल द्रौपदी क्यों कह रही है, द्रौपदी कृष्ण को संबोधित क्यों कर रही है, क्योंकि जो द्रौपदी के साथ हुआ, अर्थात उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया, सबके सामने उसका अपमान हुआ, ऐसी अवस्था में जहाँ लोगों के सामने नहीं आया जाता, ऐसी अवस्था में उसको घसीट कर लाया गया, तो द्रौपदी बड़ी व्यथित थी, बड़ी दुखी थी। तो अब कृष्ण है सामने, तो पहले तो गुणगान किया कृष्ण का, और फिर उसने द्रौपदी ने कहा कि आप ईश्वर हैं, इसलिए अपनी व्यथा अपना दुख मैं और किसी के सामने नहीं रख सकती, आपको अपना दुख बता रहे हैं। और फिर द्रौपदी ने बोलना शुरू किया। द्रौपदी ने कहा कि भरी सभा में मुझे खींच कर लाया गया, ऐसी अवस्था में जहां स्त्रियां बाहर नहीं आती, सबके सामने नहीं आती, ऐसी अवस्था में मुझे खींच कर लाया गया, दुशासन खींच कर लाया, और किसी ने विरोध नहीं किया, भीष्म, धृतराष्ट्र, ये तो मेरे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, इनके सामने ये हुआ, इन्होंने विरोध नहीं किया, और तो और मेरे पति जिन्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए, धर्म है शास्त्रों का, अगर कोई निर्बल पति भी होता है वो भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है, और ये तो इतने शक्तिशाली पति थे मेरे अर्जुन, जो गांडीव धनुष लेकर चलते हैं, भीम जिनमें 10,000 हाथियों का बल है, धिक्कार है इनके बल पर। आज द्रौपदी अपने मन की बात कह रही है, इतने दिनों से रखा हुआ था, किसको कहती, और द्रौपदी आज कह रही है धिक्कार है भीम के बल पर, धिक्कार है अर्जुन के गांडीव पर, क्योंकि वो एक अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। इतने बड़े वीर हैं, शरणागतों को रक्षा करते हैं, ये प्रसिद्ध हैं पांचों पांडव की, कोई इनकी शरण में आ जाए तो इसकी रक्षा करते हैं, मैं इनकी ही शरण में थी, इनकी पत्नी हूं, कोई मैंने शरण ली या नहीं ली, मैं तो पत्नी हूं, इन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, सामने बैठे रहे ये लोग। अब द्रौपदी कह रही है कृष्ण कि बड़ों ने रक्षा नहीं की, भीष्म ने, बहुत सुंदर भजन है, अग्रे कुरु नाम अथ पांडवाना दुशासने ना हृत वस्त्र केश, सारे लोग बैठे थे सबके सामने, और कर्ण वो मेरा मजाक कर रहा था, अपशब्द कह रहा था, दुर्योधन हंसी कर रहा था, दुशासन हंसी कर रहा था, आज भी कर्ण के शब्द मेरे कानों में है, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। और कृष्ण आपने भी रक्षा नहीं की। अब द्रौपदी कृष्ण पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है वरिष्ठों ने नहीं की, मेरे पतियों ने नहीं की जिनको करनी चाहिए। बहुत अच्छे धर्म के सिद्धांत द्रौपदी ने उस समय दिए कि धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एक पति को अपनी पत्नी की रक्षा करना यह अनिवार्य है, उसका कर्तव्य है। और यहां तो ये इतने बड़े बड़े महारथी, बहुत उसने वर्णन किया, उसने वर्णन किया अर्जुन ने क्या क्या किया, भीम ने क्या क्या किया, और उन्होंने कहा कि इनके बल पर धिक्कार इसलिए है क्योंकि आज तक दुर्योधन जीवित है, वो दुर्योधन जिसने मेरा इतना अपमान किया इन सब के सामने वो जीवित है, क्या लाभ है इनके बल का, और किस दुर्योधन की इन्होंने रक्षा की, किस दुर्योधन को इन्होंने नहीं मारा, वो दुर्योधन जो बचपन से इन्हें मारना चाहता था। द्रौपदी ने सारी घटनाओं को कह सुनाया, जब ये लोग बालक थे तो भीम को इन्होंने विष दिया दुर्योधन ने, वही दुर्योधन है। आगे चलकर जलाकर खत्म कर देने का प्रयास किया, वही दुर्योधन है। ये मारने का प्रयास किया, वही दुर्योधन है। और इस दुर्योधन को इन्होंने मारा नहीं, जीवित रखा। धिक्कार है इनके बल पर। क्या लाभ है इनके गांडीव धनुष धारण करने का, क्या लाभ है भीम के बल का, मेरी रक्षा नहीं कर सके। और कृष्ण आप भी नहीं आए, आपने भी मेरी रक्षा नहीं की। और उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक कहा, बहुत सुंदर बात कही। द्रौपदी कहते हैं, चतुर्भिकारणे कृष्ण त्वयि रक्ष्यास्मि नित्यशः संबंधा गौरवात् सख्यात् प्रभुत्वेन केशव। द्रौपदी कहती, चतुर्भिकारणे कृष्ण, हे कृष्ण चार कारणों से आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, आपने की नहीं। चतुर्भिकारणे कृष्ण त्वयि रक्ष्यास्मि नित्यशः, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए चार कारणों से। और क्या कारण है वो? संबंधात गौरवात् सख्यात् प्रभुत्वेन केशव। मेरा संबंध है आपसे, आप संबंधी हैं, आप भाई हैं मेरे पतियों के, तो एक संबंध है। तो आपको इस संबंध के नाते तो मेरी रक्षा करनी चाहिए थी। संबंधात, संबंधात गौरवात, गौरवात मतलब मेरा जो जन्म है वो गौरवपूर्ण है, मेरा साधारण जन्म नहीं हुआ है। मैं अग्नि से प्रकट हुई हूँ, यज्ञ से प्रकट हुई हूँ, और यज्ञ से प्रकट हुई चीज का रक्षण होना चाहिए। गौरवान होती है, गौरव करने योग्य होती है वो चीज जो यज्ञ से प्रकट होती है। तो इसलिए गौरवात, संबंधात गौरवात सख्यात। और मेरा संबंध तो है आपका अलग दृष्टि से, पतियों की दृष्टि से, पति भाई हैं, लेकिन सख्या, मैं आपकी सखा हूं, मित्र हूं आपकी। कम से कम इस संबंध से तो रक्षा करनी चाहिए। चतुर्भिकारणे कृष्ण त्वयि रक्ष्यास्मि नित्यशः। और चौथा, प्रभुत्वेन केशव, आप प्रभु हैं। ये बहुत सुंदर बात है। अगर हम सब देखें तो हम सब का भी संबंध है भगवान से, हर हर जीव का संबंध है भगवान से। केवल द्रौपदी का था ऐसा नहीं, पांडवों का था ऐसा नहीं, हम सब का है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान का हर जीव से संबंध है। हम लोग जब संबंध बनाते हैं तो हमारा कुछ है, 10 लोगों से 20 लोगों से 50 लोगों से 100 लोगों से, बहुत बड़ा परिवार हुआ तो 1000 लोगों से संबंध। कृष्ण का हर जीव से संबंध है। ऐसा कोई जीव नहीं है 84 लाख योनियों में जिसका कृष्ण से संबंध नहीं है। एक पेड़ का भी कृष्ण से संबंध है, क्योंकि वो केवल योनि है, जीव के रूप में उसका संबंध। और क्या संबंध है? इतने सारे लाखों करोड़ों असंख्य जीवों से कृष्ण का क्या संबंध हो सकता है? इस संबंध को पुनः स्थापित करना, इस संबंध को पुनः जानना, यही मुक्ति है। और यह भक्ति का मार्ग है। जो हमारा कृष्ण से संबंध है उसको पुनः स्थापित करना। मुक्तिर्हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, भागवत कहता है कि मुक्ति क्या है? हित्वन्यथा रूपम, आपने जो इतने सारे रूप ले रखे हैं, कभी आप अपने आप को भारतीय कहते हो, कभी पुरुष कहते हो, कभी स्त्री कहते हो, कभी पशु कहते हो, ये अन्य रूप हैं आपके। और ये कैसे सत्य हो सकता है? ये सत्य है, क्योंकि अगर ये रूप हमारा असली रूप होता तो हमें बदलना नहीं पड़ता। अगर ये रूप हमारा असली होता तो ये समाप्त नहीं हो जाता। पद्म पुराण कहता है, जलजान वलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, लाखों लाखों योनियां हैं, जलचर 9 लाख योनियां हैं इत्यादि, ऐसे 84 लाख योनियां हैं। जीव घूमता है, अलग अलग वस्त्र धारण करता है, अलग अलग शरीर धारण करता है, और इतना ही नहीं, मोह के कारण उससे अपनी पहचान बना लेता है। और जीवन भर सोचता है मैं तो यही हूं, मैं एक ये व्यक्ति हूं, इस परिवार से संबंधित हूं। तो हमारे संबंध बहुत थोड़े हैं। आप सोचिए, पिछले जन्म में भी आपके मां बाप रहे होंगे, पिछले जन्म में भी हमारे संबंधी रहे होंगे, कहां हैं आज वो? पिछले जन्म में शरीर रहा होगा, कहां है वो? इसलिए ये सत्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये असली नहीं है। असली संबंध कृष्ण से है, जो कभी नहीं टूटता। कृष्ण हर योनि में हमारे साथ है, ये सच्चा संबंध है, ये सच्ची मित्रता है। ऐसा कौन सा मित्र है जो पिछले जन्म में भी आपके साथ था, आज भी है, अगले जन्म में भी रहेगा? केवल कृष्ण है। तो इसलिए द्रौपदी कहती हैं, संबंधा, आपका संबंध है मुझसे, आपको रक्षा करनी चाहिए थी मेरी। संबंधात गौरवा, गौरवात अर्थात मेरा जन्म ये गौरवपूर्ण है। वैसे हर जीव गौरवपूर्ण है, क्योंकि हर जीव की स्थिति है कृष्ण का दास, और ये हमारा असली गौरव है। हमारा असली गौरव कोई पद नहीं है, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई धन नहीं है। हमारा असली गौरव है हम कृष्ण के दास हैं, और ये हर जीव के लिए गौरव है। इसलिए भगवान को रक्षा करनी चाहिए। संबंधात गौरवात सख्या, सखा, भगवान का जब संबंध होता है जीव से तो प्रमुख पांच रसों में होता है। या तो हम दास के रूप में सेवा कर सकते हैं, शांत रस में कर सकते हैं, या फिर साख्य रस में। जैसे जैसे रस बढ़ते हैं आनंद बढ़ता है। जब जीव शांत रस में सेवा करता है तो थोड़ा सा आनंद तो बहुत है, आध्यात्मिक जगत में आनंद परिपूर्ण है। फिर जैसे जैसे रस बढ़ता है, अलग अलग भाव है। कोई जीव जो शांत रस में सेवा करता है वो शांत रस में संतुष्ट है, साख्य रस में भगवान के सखा बने हैं जो जीव हैं सखा। तो साख्य रस है जहां भगवान के साथ खेला जाता है, भगवान को मित्र माना जाता है। आप लोग कल्पना कीजिए, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं बहुत आदर ऐश्वर्य से, भगवान को बहुत संभाल कर स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान शुद्ध हैं, नित्य शुद्धम पूर्ण मुक्तो, लेकिन अगर उन्हीं भगवान के साथ हमें खेलने का अवसर मिले, हम लोग भी छोटे बालकों की तरह कृष्ण के साथ खेलें, भागे उनके साथ, कृष्ण आगे आगे भागे, हम लोग पीछे पीछे जाएं, आगे पीछे गायें हों। ये गोलोक है, ये कृष्ण का लोक है। तो ऐसे सखा, तो किसी का भाव कृष्ण के प्रति सखा के रूप में हो सकता है, जहां उसको आनंद आए कृष्ण के साथ खेलने के लिए। कृष्ण खेलें और कृष्ण हार जाएं, कभी हम हार जाएं, कभी कृष्ण हार जाएं, ये साख्य रस है। और फिर वात्सल्य, जहां कृष्ण को अपना पुत्र माना जाता है, अपने आप को कृष्ण से बड़ा माना जाता है। दास रस में हम कृष्ण को अपने आप, कृष्ण को हम श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को निम्न मानते हैं। सख्य रस में बराबर मानते हैं, ये भी हमारी तरह मित्र है, हमारी ही तरह है। वात्सल्य रस में उसको छोटा मानते हैं, कह रहे छोटा बच्चा, इसको खिलाए नहीं तो क्या होगा, भूखा मर जाएगा इसकी रक्षा नहीं की तो क्या होगा। कभी कभी कोई असुर आ जाते हैं, भगवान मार देते हैं, यशोदा मैया तुरंत कृष्ण को लेती हैं, गाय की पूछ लेकर सारा उसके शरीर पर घुमाती हैं, उसको गोमूत्र डालती हैं, सब शुद्ध हो जाए, कोई अपशकुन नहीं रहे। भगवान तो पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, अभिन्नत्वम नाम नामिनः, ये भगवान हैं। और उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है भगवान से यशोदा मैया, हे नारायण, हे विष्णु, रक्षा करो। बेचारे विष्णु सोचते होंगे मैं क्या रक्षा करूं, ये मेरी रक्षा करने वाले हैं। ये वात्सल्य भाव है, जहां भगवान को छोटा माना जाता है कि बच्चा है मेरा। छोटा मतलब ऐसा नहीं कि भगवान को तुच्छ माना जाता है, ये माना जाता है कि भगवान मेरे बालक है, मेरा कर्तव्य है भगवान की रक्षा करना, कृष्ण की रक्षा करना। ये भगवान नहीं है, ये मेरा बालक है। और फिर है माधुर्य रस, जहां भगवान को प्रेमी माना जाता है। तो जीव का इन पांच रसों में संबंध हो सकता है भगवान से, हो सकता है नहीं है, केवल हम भूल चुके हैं उसको। हम सब में से कोई ना कोई भगवान के दास होंगे, कोई भगवान के सखा होंगे, कोई भगवान के माता पिता होंगे। ये भाव स्वतः आता है, इसको कृत्रिम रूप से नहीं लाना चाहिए। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आपको ऐसे लोग नहीं मिले, लेकिन आप सोच जान लीजिए, भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि आइए हम आपको बताते हैं आप कौन हैं, और कहेंगे आप एक मोर हैं आध्यात्मिक जगत में, कल से नाचना शुरू कर दीजिए। तो व्यक्ति वो सोचता है मैं मोर हूं, मोर। ये कृत्रिम है, ये हो नहीं सकता। ये तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे वो भाव प्रकट होता है, हमें अच्छा लगने लगता है, हम भगवान को मित्र मानने लगते हैं या भगवान को पुत्र मानने लगते हैं स्वतः, क्योंकि कृष्ण प्रेम कहीं बाहर नहीं है, यही है हृदय में। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य करुणा है, रूप गोस्वामी कहते हैं नित्य सिद्ध ये कृष्ण प्रेम यही है। लेकिन कब होता है? श्रवणादि शुद्ध चित्त करो ये उदय, जब श्रवण करते हैं कृष्ण की लीलाओं का तो फिर वो प्रेम उदय हो जाता है, यहीं पे अभी ढका हुआ है, नित्य प्रेम है। तो ऐसा हम सबका संबंध है कृष्ण से, संबंधा गौरवात सख्या प्रभुत्वेन केशवा। लेकिन अंततः वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे स्वामी हैं, उनका प्रभुत्व हमेशा है। तो ऐसे द्रौपदी ने अब अपनी व्यथा कही। आप कल्पना कीजिए उस स्त्री के लिए कितनी व्यथापूर्ण बात होगी, और वो किससे कहे। और आज इसीलिए वो धिक्कार रही है भीम को, धिक्कार रही है अर्जुन को, अपने ही पतियों को, भीष्म को, द्रोणाचार्य को, क्या लाभ है इनकी शक्ति का, क्या लाभ है इनके वरिष्ठ होने का, कि एक स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए। खींचा जा रहा था उसको बाल पकड़कर, ऐसी अवस्था में जहां वो अपने कपड़े संभाल नहीं पा रहे थे, और सब लोगों के सामने। तो इसीलिए उसने अपनी व्यथा को प्रकट किया और कृष्ण को भी कहा कि आपने भी मेरी रक्षा नहीं की, कम से कम आप तो करते। दुशासन को वहीं मार देते जब वो आया था मेरे बाल पकड़ने के लिए, आपने क्यों नहीं रक्षा की। और कृष्ण ने अब जब ये सब कह चुकी द्रौपदी, और द्रौपदी रोने लगी, क्योंकि स्वाभाविक है एक स्त्री को अपने अपमान की बात याद करके पुनः पुनः कितना कष्ट होता होगा, दुख होता हो। तो द्रौपदी की आंखों में फूट फूट कर रोने लगी द्रौपदी, कुछ और नहीं कह पाई। और तब कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया। कृष्ण ने क्या कहा ये अगले सोमवार को हम लोग सुनेंगे, क्यों कृष्ण ने रक्षा नहीं की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। माइक पीछे लीजिए।